هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وہ اللہ وہ ہے جس نے رحموں کے اندر, سورہ زمر میں آتا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ماؤں کے رحموں میں, تین اندھیروں میں, تین تاریک پردوں میں, تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا گیا. وہ اللہ ہے تمہارا رب جس کے یہ کام ہے کہ جس وقت نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا کہ یہ بچہ کیسا بن رہا ہے اندر, اندھیروں کے اندر ہے, نہ ماں کا کوئی زور ہے. ہر ماں چاہتی ہے میرا بچہ ایسا ہو, ایسا ہو, اس کی آنکھیں ایسی ہوں, اس کا رنگ ایسا ہو, اس کے بال ایسے ہوں, اس کا فلانا ایسا, میرے اوپر جائے بس. وہ جب پیدا ہوتا تو کسی اور کے اوپر ہوتا, نہ ماں کا کیا زور تھا یا باپ کا کیا زور ہے. اگر زور تمہارا چلتا ہے تو لگاؤ اپنا زور, تمہارے پیٹ میں ہے نا بچہ, لگاؤ زور. لیکن دیکھیں کوئی اور نہیں جس کی وہاں رسائی ہے. وہ اندھیروں کے اندر تصویر کشی کرتا ہے, اور کیسی تصویر کشی کرتا ہے سبحان اللہ, کیسا نقشہ بناتا ہے. اتنا سا کینوس ہے نا, چھوٹا سا چہرہ ہوتا ہے, کتنا چھوٹا ہے, اتنے سے کینوس پہ اس نے کیسی تصویر بنائی ہے کہ ہر ایک چہرہ دوسرے سے الگ ہے, ہر ایک رنگ دوسرے سے الگ ہے, ہر ایک کی آنکھیں, ہر ایک کے ہونٹ الگ الگ ہیں, کوئی ایک جیسے نہیں کہہ سکتے. ایون ٹوئنز بھی ہوتے ہیں تو ان میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. وہ ایسا مصور ہے, کیسے اس نے یہ تصویر کشی کی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سبحان اللہ ناخن, پلکوں کے بال, اور اس کے کان, اس کی آنکھیں, اس کے ناخن, ایون یہاں تک کہ آپ اس کا ہاتھ کھولتے ہیں نا تو اس میں بھی لکیریں بھی بنی ہوتی ہیں سبحان اللہ, چھوٹی چھوٹی پیارے پیارے پاؤں. یہ اللہ تعالی کی تخلیق کا شاہکار سبحان اللہ, کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے کہ ان اندھیروں کے اندر کس نے ایسا وجود پیدا کر دیا, کس نے یہ بنا دیا. ماں کہہ سکتی ہے میں نے بنایا, کس نے بنایا. پھر جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ ذرا جواب تو دے, اس کی تم کیا تعویل کرو گے. ایک نطفہ تھا پیٹ میں, ٹھیک ہے, اور اس سے کیسے یہ بچہ بنا, کوئی بتا سکتا اس کا جواب. پھر کیا عقل تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی خدا ہے, ایک اللہ ہے. اور پھر دیکھیں سبحان اللہ, اندھیرے ہیں, اندھیری فیکٹری کے اندر بن رہا ہے بچہ, نہ ایسا ہے کہ آنکھ اوپر لگی ہوئی ہے ایک دوسری نیچے لگی ہوئی ہے, کان کوئی اوپر چلا گیا ہے کوئی نیچے چلا گیا, ٹانگ ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے, انگلی کو ہاتھ پہ لگنے کی جگہ کہیں اور لگ گئی ہے, ایسا کچھ نہیں. بیلنسڈ بالکل, جیسے کسی نے نک سکھ سے سنوارا ہو. فی ای صورت ما شاء رکبک, اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا تمہاری تصویر بنائی سبحان اللہ. کے فنگر پرنٹس بھی آپ بچے کے لے لینا تو وہ بھی یونیک ہوں گے, فنگر پرنٹس تک اس کے بنے ہوتے ہیں سبحان اللہ. تو یہ جو ساری شکلیں بنائی یہ اس رب نے بنائی, کیف یشاء, جس طرح وہ چاہتا ہے. اس کا مطلب میں اور آپ جب شیشے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا آئے یہ میرے اس طرح سے ہوتے نا بال تو پھر کتنا اچھا تھا, آ میری آنکھوں کا یہ کلر ہوتا نا تو پھر کتنا مزہ آتا, آ میرا قد ایسا ہوتا نا تو پھر کتنا. نہیں, کہو کیف یشاء, یہ اللہ نے تخلیق کیا, یہ اللہ نے بنایا, پھر اعتراض کیسے, یہ اللہ کی پلاننگ ہے. اور دیکھیں میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ, اسکرین میں ایک طرف ایک بہت گورا آدمی تھا اور آدھی اسکرین پہ دوسری طرف وہ کسی سے انٹرویو لے رہا تھا, اتنا سیاہ کالا تھا کہ اس سے زیادہ سیاہ کالا نہیں ہو سکتا, اور جو گورا تھا اس سے زیادہ گورا نہیں ہو سکتا. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ, ان دونوں کو تخلیق اللہ نے کیا ہے. اب جو اس کالے کے اندر کوئی بگاڑ کوئی نقص نکالتا ہے یا اس کو حقیر سمجھتا ہے, اس نے کیا کیا, اس بیچارے اس کا کیا آپ قصور اپنا رنگ بنانے میں, اپنی شکل بنانے میں, اس کا تو کوئی نہیں ہے. کس چیز پہ, کس پہ آپ نے اعتراض کیا جب آپ نے کہا آئے ہائے دیکھو ذرا. بعض عورتیں رشتہ دیکھنے جاتی ہیں تو وہ لڑکیوں کا کہتی ہیں ہاں اس کی تو ناک ایسی تھی, وہ تو اس کا رنگ ایسا تھا, اس کے تو ہونٹ ایسے تھے, دانت اونچے تھے, آنکھیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں. کس پہ اعتراض کر رہے ہیں, اس نے تو نہیں اپنے آپ کو بنایا. ना वो काले ने अपने आप को ये रंग दिया, ना गोरे ने अपने आप को ये रंग दिया, तो पीछे कौन है? जिसने उसके अंदर कोई नुक्स निकाला, उसने अल्लाह की तखलीक में नुक्स निकाला। तुम कौन होते हो अल्लाह की तखलीक में नुक्स निकालने वाले? और जिसने वो किसी की तारीफ की, तो उसकी क्या तारीफ है? तारीफ तो करनी है तो अल्लाह की करो, और नुक्स ना निकालो, क्योंकि इनडायरेक्टली तुम किस में नुक्स निकाल रहे हो कि अल्लाह ने बड़ा गंदा बनाया। कितनी बड़ी बात है जो इंसान अपनी जुबान से निकालता है जब वो ये कहता है, और वो रियलाइज भी नहीं करता कि वो क्या कह रहा है। और कितने मजे से बैठ के हम ऐसे कमेंट्स दे देते हैं ना लोगों पे, और हमें कभी सोचते भी नहीं है कि हम किसके ऊपर ये बातें बना रहे हैं। इसके बाद, ये पढ़ने के बाद, कैफा यशाउ पढ़ने के बाद, आप कभी जिंदगी में किसी की शक्ल पे, किसी की सूरत पे, किसी की रंगत पे कोई एतराज कर सकेंगे? जब साफ उसने कह दिया युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, जैसे उसने चाहा, आपको उसकी उसकी चाही हुई चीज, जो उसकी उसने प्लान किया, जो उसने तस्वीर की वो पसंद नहीं आई? अल मुसव्विर उसका नाम है, उसकी सिफत है, वो तस्वीर कशी करता है। और कितनी दफा अगर हमने ऐसा कहा हुआ है तो हमें तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हमने बुरी बात कही हुई है मुंह से। हर शक्ल खूबसूरत है, क्योंकि हर शक्ल और हर रंगत उसकी बनाई हुई है। असल बात यह है ना कि रब से मोहब्बत होगी तो कहेंगे ना मेरे रब ने बनाई है ना। जैसे इकरमा ने कुराने पाक को खोला, तो जब मुसलमान हो गए थे ना, फिर कुरान जब पढ़ा करते थे, रोते थे, खोल के कहते थे ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। इसी तरह हम जब अल्लाह से मोहब्बत करने लगेंगे ना, तो फिर हर सूरत को देखेंगे ये मेरे रब ने बनाई नहीं, मेरे रब का बनाया हुआ है, ये रंग भी उसने दिया है और ये रंग भी उसने दिया है, सुभान अल्लाह, फिर एतराज नहीं कर सकेंगे। ये जो जुबाने खुली होती ना एतराज करने के लिए, वो इसलिए कि अल्लाह की पहचान नहीं है और उससे वैसी मोहब्बत नहीं है जैसे होनी चाहिए, इसीलिए फिर कीड़े निकालते हैं लोगों में। आप मुझे बताएं, इतना सा भी, जर्रे बराबर भी किसी का बस है अपनी शक्ल बनाने में? जर्रे बराबर भी नहीं है? तो फिर मान लेना कि ये सब वाकई अल्लाह ने ही बनाई है, और मैं कौन होती हूं कि मैं अल्लाह के मुकाबले में खड़ी होकर कहूं कि अल्लाह तूने नहीं सही बनाई। और गहरे अंधेरों में माँ के पेट का अंधेरा है, यूट्रस का अंधेरा है, उसके अंदर झिल्ली है, उसके अंदर वो बच्चा बन रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह की नजरों में वो बन रहा है। जब भी एक एक चीज उसकी ऐसे संवारी हुई कि जब निकलता तो कैसा एक जबरदस्त चीज होती है, हर एक को प्यार आता है, सुभान अल्लाह। मैं तो कहती हूँ इंसान क्या, जानवर के बच्चे पे भी प्यार आता है, इतना वो प्यारा होता है। जितना कुछ रहमों में पल रहा है, जितना कुछ बन रहा है रहमों में, वो अल्लाह बनाने वाला है, वो सूरतें देने वाला अल्लाह है। ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, कोई इला उसके सिवा है ही नहीं। ओ लोगो, जब तुम्हारी सूरत गरी करने वाला वो, जब माओं के पेटों में तुम्हें बनाने वाला वो, तो फिर पैदा होके किसी और को इला बना लेते हो, कहीं और जाके सजदे करने लगते हो, कहीं और हाथ उठाते हो, किसी और के नाम की माला जपते हो, फिर किसी और के जिक्र हर वक्त जुबान पे रहते हैं, फिर अल्लाह ही भूल जाता है तुम। ला इलाहा इल्लाहु अल अजीज अल हकीम, मैंने जैसे बताया अजीज वो है जो फुल अथॉरिटी रखता है, वो जैसे चाहे बनाए, तुम कोई एतराज करने वाले नहीं हो, वो जैसे चाहे, उसकी पावर है, उसकी अथॉरिटी है, कोई दखल नहीं किसी का। किसी को चपटी नाक दे दे, तीखी दे दे, गोरा रंग दे दे, काला दे दे, उसका फैसला है, और वो हकीम है, हिकमत वाला है, उसकी हर काम में हिकमत है। अगर उसने किसी को कैसा भी बनाया, उसमें भी उसकी हिकमत है। हमने जब कह दिया ना अलिफ लाम मीम पढ़ के, कि हमने सरेंडर कर दिया अपनी अकल, तो हम हिकमतें नहीं जान सकते, बता दिया गया हमें तुम सारी चीजें नहीं समझ सकोगे, तो अभी इतराफ कर लो। हमने इतराफ किया तभी आगे हमने पढ़ना शुरू किया ना, फिर उसके बाद ये कहाँ से आ जाता है, हाँ इसको ऐसा क्यों बनाया, इसको ऐसी शक्ल क्यों दी, ये तो ऐसा होना चाहिए था, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं फिर। हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब, अब देखें यहां पे अब आप बात को समझें कि वो जिसके से कोई चीज मख्फी नहीं है जमीन की और ना आसमान की, वो जो रहमों में तुम्हारी शक्लें बनाता है, तुम्हें शक्ल देता है जैसे वो चाहता है, उस अल्लाह ने ये नाजिल की है या किताब। अब कुछ किताब की एकदम अजमत दिल में आई, अच्छा वो अल्लाह जिसका इल्म इतना है कि कोई चीज आसमानों जमीन में उससे छुपी भी नहीं है, उस अल्लाह ने नाजिल की है ये किताब, यानी कि कितना अजीम कलाम है फिर। कि आप कोई भी चीज, आपको मसलन कोई बीमारी, अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज हो जाती है, हार्ट की मसलन किसी को अल्लाह ना करे बीमारी हो जाती है, तो किसके पास जाता है, किसी शॉपकीपर के पास, किसी नाई के पास, किसी धोबी के पास नहीं जाता, किसके पास जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास। ये क्यों आप किसी और के पास चले जाते ना, किसी बढ़ई के पास, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन के पास जाके क्यों नहीं दिल का इलाज कराते, नहीं आप कहते हैं उनके पास इल्म नहीं है ना, जो इस इल्म का माहिर है मैं उसके पास जाऊं, और जिसके पास फिर जितना पैसा होता है वो उतने बड़े डॉक्टर के पास जाता है, वो जी उसके पास इतनी डिग्रियां हैं, वो तो फलानी जगह से पढ़ के आया है, ऐसे ही होता है ना। क्या बात है कि इसमें तो हम इतने सियाने हैं कि हम अपना दिल का इलाज आके किसी बेइल्म से नहीं कराते, जो उस इल्म को जानता ही नहीं उससे नहीं कराते, माहिर से माहिर ढूंढते हैं। लेकिन जिंदगी में हिदायत कहाँ से लेनी है, उस सोर्स को छोड़ के जो हर चीज को जानता है, जो भी जमीन में और आसमान में, उसको छोड़ के कभी उस इंसान के पास जाते हैं जहां ये बताएगा कि जिंदगी कैसे गुजारनी, ये हमें बिजनेस के तरीके बताएगा, ये हमें बताएगा क्या हलाल है क्या हराम है, कैसे चलना है जिंदगी के अंदर, कामयाब कामयाब कैसे होना है, ये हमें एटिकेट सिखाएगा, ये हमें पहनना सिखाएगा, ये हमें बोलना सिखाएगा, ये हमें माशरती मामलात सिखाएगा, जो ये कहेंगे वो ठीक होगा। कोई सेलिब्रिटीज होंगे, कोई मॉडल्स होंगे, कोई और साइंटिस्ट होंगे, या कोई किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई, उनसे जाके पूछते हैं कैसे चलना है जिंदगी में, ये बताएंगे, ये मॉडर्न है ना, इनको पता है, और वो इन्नल्लाह उसको पीछे छोड़ देते हैं। यहां पे नहीं समझ आती कि जिसके पास सारा इल्म है उससे जाके मैं पूछूं, अपनी जिंदगी के हर मामले में उससे गाइडेंस लूं, वो मुझे गाइड करेगा, क्यों, इसलिए कि उससे तो कोई चीज छुपी ही नहीं हुई आसमानों जमीन की, वो मुझे बताएगा, वो अल्टीमेट जिसका इल्म लामहदूद है, उससे क्यों ना जाके मैं पूछूं, मैं क्यों जाके उनसे पूछ रही हूं जिनको अपनी खबर नहीं है, जिनको अपने कल का पता नहीं है, उन्होंने मरना भी है कि जिंदा रहना, जिनको अपने कल का पता नहीं है कि उनकी जिंदगी में क्या हादसा होने वाले, जिनको अपने जिस्म का भी नहीं पता उनके अंदर कितनी बीमारियां पल रही हैं, कल को उनके लिए क्या डायग्नोज हो जाता है, जो बेचारे इतने बेबस और बेइल्म है, उनको ये नहीं पता कि मेरे पीछे अभी कौन क्या बात कर रहा है, इतने बेइल्म से जाके आप गाइडेंस चाहते हो और अल्लाह की बात को छोड़ देते हो, अल्लाह से पूछो ना, उससे रहनुमाई लो, उस अल्लाह ने सिर्फ पैदा नहीं किया, उसने तुम्हारे लिए गाइडेंस का भी इंतजाम किया कि मेरे बंदे भटके ना इस जिंदगी में, देखिए ये दिस इज लव, उसके आप इस चीज को समझे कि ये कुरान बोझ नहीं है, ये मुशक्कत नहीं है, सूरह ताहा की स्टार्ट में ही अल्लाह ताला ने फरमाया नबी हमने आपके ऊपर ये कुरान मुशक्कत के लिए नहीं नाजिल किया, ये बोझ नहीं है, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, ये तो उसकी मोहब्बत है, ये तो उसका रहम है कि उसने हमें कहा कि ये लोग भटकेंगे, इधर ठोकरें खाएंगे उधर ठोकरें खाएंगे, और जैसे माँ बाप बच्चे को समझाते हैं ना, बेटा एक जमाना तुम्हें सिखा सकता है लेकिन मैं तुम्हें आज अपने तजर्बे से वो बातें सिखाता हूँ जो तुम्हें 80 साल में जाके समझ आएंगी, बेटा मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ उसको सुनो, बच्चे कहते हैं हमें क्या, वो गलतियां करके सीखना चाहते हैं, वो ठोकरें खा के फिर संभलना चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं इनको ठोकर ना लगे, माँ बाप उनको पहले समझाते हैं, हालांकि वो बेचारे माँ बाप ही होते हैं, उनको भी इतनी तो नहीं समझ। यहाँ पे तो रब कायनात का मालिक खालिक जानने वाला वो समझा रहा है हमें, और हम उसकी रहनुमाई उसकी दी हुई गाइडेंस को छोड़ के और पसंद करते हैं कि हम ठोकरें खाएं कहीं जाके, हम गिरे हम उठे, हम फिर उसके बाद फिर कोई तजर्बे करें, फिर हमें कुछ समझ आए, कहीं थप्पड़ पड़ेंगे तो समझ आएगी। क्यों? तो उसकी तो मेहरबानी है कि उसने तुम्हें रास्ता दिखा दिया इस जिंदगी में भी सही चलने का और जन्नत तक पहुंचने का भी, तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। इसीलिए अर्रहमान अल्लम अल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया। ये रहमान की सबसे पहली उसका मैनिफेस्टेशन, उसका मुजाहिरा, उसकी रहमत का क्या है, कैसे पता चलेगा कि वो हम पर रहम करने वाला है? सबसे पहली बात ही ये फरमाई कि उसने कुरान सिखा दी। सुभान अल्लाह। अब आप और मैं उसको रहमत समझे ना समझे वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उसने हमें हिदायत दी थी, राह दिखा दी, वरना हम तो अंधे थे। तो वल्लदी अनजल अलैकल किताब, उसने नाजिल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब। इस किताब में ना दो तरह की आयात हैं, अब जिनका जिक्र यहाँ पे आ रहा है। एक क्या है, मिन्हु आया, इस किताब मिन्हु की जमीर किधर जा रही, इस किताब की। इसमें से आयात तो मुहकमात नंबर वन कौन सी आयात है, जो मुहकम है। मोहकम आयात क्या होती है? मोहकम आयात मतलब जिनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो हमें समझ में आ सकती हैं, जिन 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 पे अमल करना है, ठीक है, जो अमल की बातें हैं वो भी मोहकम में आ गई। मोहकम ही एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ। इसी तरह मोहकम में वो भी सारी आयात आ गई जिनमें पुराने किस्से हैं, पुरानी अकवाम के, जिनके अंदर नसीहत की बातें हैं, कायनात की निशानियों के ऊपर बात कही गई है, आसमान की तरफ देखो, जमीन की तरफ देखो, देखो इन चीजों को देखो, जितनी ये सारी बातें जो हैं ये मुकम्मल में है, इबादात हैं, अखलाक है, फराइज हैं, ये करना है ये नहीं करना, ये सब चीजें हलाल है हराम है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, तौहीद है, बिल्कुल क्लियर है। तो एक तो ये है, हुन्ना उम्मुल किताब, ये बैकबोन है किताब की, ठीक है, ये जो कानून है शरीयत है ये सब ये बैकबोन है, ये जड़ है, ये बेस है, ठीक। अच्छा, अब नंबर टू भी, इसमें एक और कैटेगरी भी है आयात की, वो कौन सी है, वह उखारु मुतशाबिहात, और दूसरी ऐसी है जो मुतशाबे है। मुतशाबे मीन्स क्या, जिनके माने में कोई शुबे की गुंजाइश हो, यानी जिनका माना हमारी समझ में नहीं आ सकता। देखिए पहले ही बता दिया गया ना कि हर चीज तुम्हें समझ नहीं आएगी, अलिफ लाम मीम से समझ आ गई ना, ये बात हर चीज नहीं तुम्हें समझ आएगी, ठीक है। तो वो ऐसी चीजें भी, इश्तेबाह में डालने वाली भी चीजें, एक जैसी नजर आती हैं, या जिनका जिनकी हकीकत इंसान समझ नहीं सकता। अब उनमें एग्जाम्पल्स क्या है, मसलन है, आपको बताया जाए, अल्लाह ताला का अर्श, अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, और फॉर एग्जाम्पल ये कुरान में आता है अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है। अब वो कैसे मुस्तवी है, क्या वो अर्श पे बैठा हुआ है? नाउज़ु बिल्लाह, हम ऐसे नहीं कह सकते। वो उसकी हकीकत वो ही जानता है, हमें नहीं पता, हम यहाँ पे गिव अप करते हैं। ओके, अल्लाह की कुर्सी है, वो कैसे है कुर्सी, क्या वो एक स्टूल है, क्या वो क्या है, हम नहीं जानते, वी गिव अप, हमने अपने हाथ उठा दिए, ठीक है, हमने कहा कि नहीं, ये ऐसी आयतें हैं जो हमारी समझ में नहीं आ सकती, बजाय क्या उसके अंदर बहसें शुरू करते। अच्छा, अल्लाह ताला ने अपने हाथ की बात की, अपने चेहरे की बात की, हम नहीं समझ सकते इसकी हकीकत, अल्लाह का हाथ कैसे, एक हमारा हाथ है, हम ऐसे नहीं कह सकते जैसे हमारा हाथ है वैसे अल्लाह का, हम ऐसे नहीं कह सकते हम जैसे हमारा चेहरा ऐसे, नाउज़ु बिल्ला नाउज़ु बिल्ला। और हराम है ये, हराम है ये, सुन ले मेरी बात को, हराम है ये कि आप अपने जहन में अल्लाह का कोई तसव्वुर लेकर आए कि अल्लाह ऐसा कोई एक एक शक्ल आपके जहन में है, ये हराम है, क्योंकि आप अल्लाह ताला को नहीं इमेजिन कर सकते। इतनी सी बात से आप सोचें कि अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में फरमाया, वो ऐसी है कि जिसको ना किसी ने आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, और ना किसी दिल में उसका तसव्वुर आ सकता है। हालांकि जन्नत क्या है? अल्लाह की मखलूक है। एक मखलूक का भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते तो खालिक का कहां से करेंगे? जो आपके जहन में आता है वो जन्नत नहीं है तसव्वुर, क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया कि तसव्वुर ही नहीं कर सकते, तो रब का तसव्वुर कैसे कर सकते हैं? इसलिए कभी भी ना जहन में ये लेकर आए, ठीक है। तो ये हैं मुतशाबे चीजें, इस तरह हम मिसाल के तौर पे हम अपनी करना चाहिए, बाकी चीजों को हम तसव्वुर कर सकते हैं। मतलब जहन में कोई तसव्वुर करें, कोई आग है, कुछ बहुत चाहे इस तरह की जहन्नम होगी, पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं पुल सिरात ऐसा होगा, दिमाग में एक आता है चीजें, वो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अल्लाह के बारे में कभी कोई तसव्वुर ना करें, कोई शक्ल ना बनाए अपने जहन के अंदर। और जब हम जन्नत की बात करते हैं तो फिर हम अपने जहन के अंदर कोई बाग लेकर आते हैं, कोई इस तरह की चीजें, मोहल्लात लेकर आते हैं, ठीक है। मगर ये सारी मुतशाबे चीजें हैं, इनकी हमें समझ नहीं हो सकती। जब कहा जाता है कि जहन्नुम के अंदर इस तरह थोहर का है, जकूम का है, पौधा ऐसे है, उसमें से खाएंगे, उसमें ऐसा पानी है जो वो पिएंगे, तो फिर अब जहन के अंदर आए लो वहां का तो टेम्परेचर इतना है, तो फिर ये कैसे होंगे वहां पे, ये कैसे हो सकता है। अब जन्नत के अंदर तो इस तरह है, वो वहां से तोड़ेंगे फल को और फिर वो वापस वहीं पे लग जाएगा, ये कैसे हो गया। वहां पे तो ना किसी को बाथरूम आएगा, ना किसी ने बूढ़ा होना, ना किसी को बीमारी लगे, ये कैसे फिर हो सकता है। ये चीजें यानी हम नहीं समझ सकते, ये हमारी अकल से बियॉन्ड चीजें हैं, इसलिए इनके ऊपर बहसें करना, इनके ऊपर बातें करना ये जायज नहीं है। ये आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन ये है मुतशाबे, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई कि कुरान में एक है जो मुहकम है और एक है मुतशाबी आयात, ठीक है। अब क्या है, फअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, एक दिल ऐसे हैं जिनमें कजी है, टेढ़पन है, दिल ही खराब है तो फिर आगे क्या होगा, मुझे खुद ही बताए ना, ऐसे टेढ़े दिलों से तो टेढ़ी बातें निकलेंगी ना। तो फयत्तबिउना मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाल फितनति वब्तिगा तावील, फयत्तबिउना वो इत्तेबा करते हैं किसकी, मा तशाबह मिन्हु, जो शुबे में डालती हैं इसमें से, मिन हु की जमीर किस तरह जा रही, इस किताब में से जो मुतशाबे आयते हैं ना, बस वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्यों उनके पीछे क्यों पड़ते हैं? इब्तिगाल फितनति, फितना निकालने के लिए, वब्तिगा तावीली, और उसकी तावील जानने के लिए, उसके अंदर से मनमानी तावीलें करने के लिए, इसलिए वो ऐसी आयतों के पीछे पड़ जाते हैं। कि देखिए ना, अब मुहकम में से तो कोई वो चीजें नहीं निकाल सकते, उनको क्या, वो तो क्लियर है, उनका जो अंदर टेढ़ा होता है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, ऐसी चीजों को निकाल के उससे लोगों को बहकाते हैं, फितने निकालते हैं। उन्होंने उनकी नीयत क्या होती है कि लोगों को बहकाएं, भाई ये क्या बात हुई, तो तुम्हारी तो हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पे नजूल फरमाता है एक तहाई रात में, तो फिर ये कैसे हो सकता है, तो क्या किसी वक्त यहाँ पे रात है, किसी वक्त कहीं और रात है, तो फिर क्या, ये फिर इसकी हकीकत बताओ। अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे हाय अब हम क्या करें। याद रखें ये मुतशाबे चीजों में से है, चाहे वो हदीस में है, चाहे वो कुरान की आयात में, नहीं अल्लाह ताला फिर कैसी है अर्श के ऊपर ये बताओ, फिर इस तरह कयामत के अंदर ये फिर कैसे होगा, ये 50,000 साल का दिन, तो ये 50,000 साल में क्या इंसान मर नहीं जाएगा, वो खाए पिए बगैर कैसे रहेगा, वो सोए बगैर कैसे रहेगा। तो कई चीजें ऐसी ना जिनके अंदर से वो इस तरह के बिगाड़ निकालते हैं, ऐसी टेढ़पन निकालते हैं, क्योंकि अंदर अपने कजी है ना, तो अब फितना तो पैदा करना है, लोगों को भी हटाना है इससे, लोगों को भी दिल में शकूक व शुभात पैदा करने है। मैंने आपको बताया था ना कि ईमान बिल गईब, इसमें शकूक व शुभात पैदा किए जाते हैं, ईमान बिल गईब में, और वो इसी तरह किए जाते हैं कि ऐसी ऐसी आयतें लेके, ऐसी ऐसी हदीसें लेके लोगों को बहकाया जाता है। और मैंने आपको क्या कहा कि इस सूरत के अंदर जम जाने का, साबित कदमी का मैसेज है, आपने जम जाना, ऐसे लोगों के वसवास और शकूक व शुभात में नहीं आना। अब ये आयतें फिर क्यों हैं, ये भी इनके लिए टेस्ट है, ऐसे लोगों के लिए, ये ऐसे मजामीन, अब मसलन अलिफ लाम मीम के पीछे कोई पढ़, अब जब इसका कोई माना नहीं बताया गया तो फिर इसके पीछे क्यों पढ़ गए? बाज दफा लोग इसलिए चाहते हैं कि हम कोई नई नई बातें लेकर आए ना, नई बातें, कोई नई चीज निकालेंगे तो फिर उससे कुछ हुआ। मसलन किसने कहा, भाई आप बताएं असहाबे काफ का कुत्ता इस वक्त कहाँ पे है, आपको पता है कहाँ पे? उसने कहा नहीं पता। उसने कहा वो तो जन्नत के अंदर घूम रहा है असहाबे काफ का कुत्ता। भैया आपको इससे क्या, असहाबे काफ का कुत्ता कहाँ से आया, क्या हुआ उसका, क्या नहीं हुआ, ये कोई अमल की बात है? नहीं, इस वक्त बताएं इस वक्त जो अंबिया हैं वो क्या कर रहे हैं, इस वक्त बैठे हुए उनकी क्या एक्टिविटीज हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर क्या इस वक्त कर रहे हैं, भाई आपको इससे क्या? तो यानी ऐसी चीजों के पीछे ना पढ़ो कि नई नई फितने निकाल लो उनसे। इसका मतलब है कुरान के भी दोहरे असरात हैं, यानी कुछ लोगों के लिए जिनके दिल ही टेढ़े हैं उनके लिए गुमराही है। इसी से हमने शुरू के अंदर भी पढ़ लिया था ना, ये दिलु भी कथीरा वो यादी भी ही कथीरा, इसी कुरान से लोग भी बहकते हैं और इसी कुरान से हिदायत पाते, और या फिर नए नए माने निकालने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं ऐसी ऐसी आयात के, दिलों में जो टेढ़ है, और फिर लोगों को जो हटाना है हक बात से, तो अब उनके अंदर भी तो कुछ ऐसे शकों को शुभात पैदा करने हैं ना, तो फिर यहां से लाते हैं वो चीजें। हजरत आयशा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की और फरमाया जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मुतशाबे आयात के पीछे पड़े हुए हैं तो याद रखो ये वही लोग हैं जिनका अल्लाह ने इस आयत में जिक्र की। ठीक है कि इनको छोड़ देना चाहिए। जब आपको पता चलता है ना कि ऐसे लोग हैं जो इन चीजों के अंदर खोज में लगे हैं, छोड़ दें उनको, उनके पास ना जाए, ये गुमराह करने वाले, ये फितने पैदा करने वाले, नई से नई बातें उसमें से निकालने वाले हैं। तो इनका जौक ही क्या होता है, इनका शौक क्या होता है, बस दौड़ते हैं मुतशाबे की तरफ। भाई अमल की बातों को लो, जिनकी चीजों का आपकी जिंदगी के अंदर कोई काम है उनके पीछे जाओ या उसमें बहस करने लगे अल्लाह का हाथ कैसा है फिर। और इसी चीज के ऊपर ना, अल्लाह की औसाफ के ऊपर यहीं पे लोगों ने ठोकर खाई और कई फिरके बने, लाइक मोतजिला का फिरका, तो ये एक फिरके का मैं नाम ले रही, और भी कई, तो ये यहां पे ठोकर खाते हैं। इसके ऊपर बात करने के हम कहें कि बस अल्लाह, हम हमारी अकलें कहाँ अल्लाह ताला तेरे तक जान सकती हैं, तुझे पहचान सकती हैं, अल्लाह जैसा तू है तुझको मालूम है, हम नहीं जान सकते क्या अल्लाह की जात को, हम नहीं समझ सकते अरे वो कैसे हई और कयूम, हई कैसे है भाई वो? अब कुछ लोग ये कहते हैं नहीं वो ये बताए ना वो हमेशा से कैसे है फिर ना, हमेशा से कैसे है? तो यही तो हदीस में आया ना कि शैतान कहेगा तुम्हें किसने पैदा किया, अच्छा फिर उसको किसने पैदा किया, अच्छा फिर जब कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया तो कहेगा अल्लाह को फिर किसने पैदा किया, ये वसवसे डालता है दिल। तो वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, इनकी तावील जो है, जबकि ये मुतशाबे आयात की तावील अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, जब अल्लाह के सिवा उनकी हकीकत उनकी तफसीर नहीं कोई जानता तो फिर इसके पीछे क्यों पढ़ते हो? वर रासिखून फिल इल्म, और जो इल्म में रसूख रखने वाले, इल्म में पुख्ता हैं, वो क्या कहते हैं, उनका रवैया आप देखें, यकूलूना वो कहते हैं आमन्ना भी, हम ईमान लाए इसके ऊपर। ये जो भी मुतशाबे हैं मुहकमात हैं सबके ऊपर हम ईमान है, कुल्लुम मिन इंदी रब्बीना, सब हमारे रब की तरफ से, जब उसने नाजिल किया तो उसकी तरफ से है, हम बस ईमान लाए, हमने ये नहीं किया ना कि ये फिर कैसे है वो कैसे है, ठीक है, लेकिन ये सब के नसीब में नहीं होता। अमा यदक्कर इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत पकड़ते मगर अकल वाले, अकल वालों को सिर्फ ये बात समझ आती है। तो यहाँ पे रासिखूना फिर इनकी तारीफ है कि वो लोग जो इल्म में गहराई रखते हैं वो इन चीजों के पीछे नहीं जाते, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कहते हैं हम ईमान लेकर आए। तो सारी ये आयतें अल्लाह की तरफ से, जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के पास आए थे काफिर भागे हुए, बड़े खुश के, अब क्या कहेगा, अब देखते हैं भाई तुम्हारे साथी ने तो कहा है कि वो बैतुल मकदस होके आया और आसमानों तक होके आ गया एक ही रात में, पूछते हैं क्या उन्होंने उन्होंने खुद कहा है? काफिर कहने लगे हाँ। फरमाया फिर मैं तस्दीक करता, फिर मैं मानता। आप देखें क्यों वो माने, इसलिए कि मेरी अकल में पड़े ना पड़े कैसे हो सकता है एक रात में यहां से, लेकिन बस मैं मान गया, इसलिए कि वो उन्होंने सच्चों के सच्चे ने कहा है। और ये कलाम अल्लाह का है, जब उसने बताया कि जन्नत है हमने मान लिया, उसने बताया कयामत है हमने मान लिया, कैसे होगी जन्नत वो फिर कैसे है, फिर कि कैसे हो सकता है, अभी बनी है कि नहीं बनी पता नहीं, शायद उस वक्त ही बना। जहन्नम कैसे हो सकता है इतना टेम्परेचर हो, नहीं जब उसने बता दिया जहन्नम है और ऐसी ऐसी है हमने मान लिया, कैसे हो सकता है उसमें प्लांट्स उग रहे हो आग के अंदर, नहीं हमने मान लिया। जब हमें बता दिया गया हमने आगे कोई क्वेश्चन नहीं किया, हमें बताया गया अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है हमने एज इट इज मान लिया, हमने कहा आमन्ना भी कुल्लु मिन इंदी रब्बिना, उसका हाथ है उसका चेहरा है जैसे उसकी शान के लायक है, हम सिर्फ ये कहते हैं जैसे उसकी शान के लायक है बस, हम नहीं आगे जानते कि क्या है। समझ आ गई बात? तो ये रवैया किन का होता है, रासिखून फिल इल्म का। रासिखून फिल इल्म होते कौन है जिनकी इतनी जबरदस्त तारीफ आ गई, एक तो वो है जिनके दिल ही टेढ़े हैं, रासिख यानी जैसे मैंने आपको बताया उनका इल्म पुख्ता है, पुख्ता इल्म कैसे पुख्ता इल्म हो जाता है, पुख्ता इल्म ये एक दफा पढ़ने से नहीं होता ना, व्हाट्सएप के ऊपर ये वीडियो देखने और बस वहां पे मैसेजेस पढ़ने और किसी कभी किसी की वीडियो आ गई वो देख ली हो, या क्यू टीवी के आगे बैठ गए, कुछ लोग अपना दीन क्यू टीवी से भी लेते हैं, कहते हैं कि हम वो चैनल देख लेते हैं तो बस ठीक है, अब बस हम रासिखूना फिल इल्म हो गए ना, इससे भी नहीं होता, और ना ही इससे होता है कि बस साल में एक दफा रमजान आया उसमें दौरा कुरान कर लिया और उसको समझा कि बस मैं रासिख हो गई इल्म में। याद रखिए दौरा कुरान भी उसको फायदा देता है जिसने पहले से कुरान पढ़ा हो पढ़ रहा हो, क्योंकि वो तो एक दौरा है ना, वो तो एक जस्ट गोइंग थ्रू है। अब जिसको समझ ही नहीं है किसी आयतों की, हम मसलन हम अगर 2-3 घंटे लगा के 10-12 आयतें करते हैं तो ये भी कम है इन आयतों को समझने के, इनमें इतनी डेप्थ होती है। और तो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि हमने बस दौरा कर लिया तो हमें सारा कुरान समझ आ गया, इससे रुसूख नहीं आता, रुसूख आता है बार बार पढ़ने से, बार बार पढ़ो बार बार पढ़ो, इसको डिस्कस करो, इसको अमल में लेकर आओ, इससे आता है रुसूख। ये रसूख पाना, रसूख का मतलब है जम जाए उसके ऊपर, जमाव आ जाए, और जमाव ऐसे ही थोड़ी आता है, ये बस हमने एक दफा, जब कोई इंसान कहता है कि मैंने सर्टिफिकेट के लिए पढ़ रहा हूँ, कोई सर्टिफिकेट के लिए पढ़ने के लिए आता है वो कैसे रसूख पा सकता है, हमने तो कर लिया ना, हमने एक दफा सर्टिफिकेट ले लिया, अब क्या जरूरत है, ये इतना काफी नहीं है, बल्कि इन डीप अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं रसूख, डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग ऐसे थोड़ी आ जाती, तो इल्म के दर्जे है ना। बाज ने अब ये देखें रमजान के अंदर क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, उनका इल्म बस इतना ही है कि क्वेश्चन आंसर में बैठ गए, हर साल वही क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, हर साल पूछा जा रहा है अच्छा जी रोजे का फिदिया क्या है, हर साल पूछा जा रहा है अच्छा जकात फलान की कितनी है उसको दे सकते हैं कि नहीं, हर साल यही क्वेश्चन है, ये एक दर्जा है, ये क्या कि आंसर पूछ ली, एक दर्जा ये भी है कि एक दफा पढ़ लिया फिर उसके बाद बैठ गए, उसके बाद तो जो पहला पढ़ा था वो भी भूल गया, जब आप एक दफा पढ़ के छोड़ देंगे तो पहला भी जाएगा, और एक ये है कि इंसान बार बार उसको दोहराए बार बार उसको दोहराए, देखिए कोई चीज भी जज़्ब करने के लिए क्या जरूरी होता है, बार बार उसको पढ़ना, उससे रसूख आता है, उसमें पुख्तगी आती है इल्म के अंदर, जमाव आता है, ऐसे ही नहीं आ जाता, ये आसान थोड़ा ही है। आप बड़ों को देखें अपने असलाफ को देखें कि वो किस तरह उन्होंने कुरान के साथ वक्त लगाया, मुजाहिद ने मुफस्सिर कुरान है 30 दफा इब्ने अब्बास से कुरान सीखा 30 दफा, तो ऐसे नहीं है कि हम जिस तरह हमारा एटीट्यूड है कि हम जिस तरह चाहते हैं बस साल भर में कुरान खत्म हो जाए हमें सर्टिफिकेट मिल जाए, ये इससे पुख्तगी नहीं आएगी, असल पुख्ता इल्म अगर लेना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, वक्त लगाना होगा, कुर्बानी देनी होगी, कुछ कहीं कहीं से वक्त निकालेंगे तो इसको दिया जाएगा, जैसे इब्ने माजा में हदीस है कि आबिदों में से 1,000 आबिदों से एक फकीर शैतान को सख्त नागवार होता है। हजार आबिद है ना, उसको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक पुख्ता इल्म वाला होता है ना, उसको वो बुरा लगता है, क्योंकि उसको पता है कि जब पुख्ता इल्म आ जाता है तो फिर कैसे चेंज आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि लोगों में से कुछ अल्लाह वाले हैं। अब सारे ही अपने आप को अल्लाह वाले समझते हैं, लेकिन हदीस में है कुछ अल्लाह वाले अहलुल्लाह है। लोगों ने पूछा वो कौन है या रसूल, आपने फरमाया वो कुरान वाले हैं और अल्लाह के खास लोग हैं, अहलुल कुरान, अल्लाह के खास लोग, स्पेशल पीपल। तो ये इल्म रसूख से आता है। और देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि पुख्ता इल्म वाले कौन है, फरमाया जिसकी कसम सच्ची हो, जिसकी जुबान रास्त को, यानी सीधी बात, साफ बात, सच्ची बात, सही बात करने वाली, जिसका दिल सलामत हो, जिसका पेट हराम से बचा हुआ हो और जिसकी शर्मगाह जिना से बची हुई हो, वो हैं पुख्ता इल्म वाले, रासिखून फिल इल्म वो हैं। तो ये बहुत बड़ा ऑनर है जो यहाँ पे दिया गया। यार इसको इस तरह से भी पढ़ा गया है, वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाहु वर्रासिखून फिल इल्म, इसकी तावील अल्लाह जानता है और रासिखून फिल इल्म जानते हैं, इस तरह से भी पढ़ी गई है ये आयत, यानी वक्फ यहाँ पे। लेकिन ज्यादा बेहतर यही लगती है कि अल्लाह ही उनकी तावील जानता है और जो रासिखून फिल इल्म है वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि हम बस ईमान लेकर आए। तो अब देखना यह है कि हम क्या चाहते हैं अपने लिए, कि हम रसूख पाए इल्म में या सतही सतही सा इल्म ले, शैलो शैलो नॉलेज, कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, कुछ सीखा कुछ नहीं सीखा, बस अपने आप को समझा कि बस मैंने पढ़ लिया ना, बस मेरे पास डिग्री तो है ही, तो अब क्या सब आता है मुझे, ये भी एक होता है। तो हम अपने लिए कैसा इल्म चाहते हैं वैसा ही पाएंगे ना। अब जब इल्म में रसूख आ जाता है तो फिर इंसान पता है कैसा हो जाता है, कि उसकी दुआएं बदल जाती हैं। अब उसकी दुआ क्या है, अब ये दो आयतें आगे आ रही हैं उसकी दुआ पे जो रसूख पा लेता है इल्म, वो क्या कहता है, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बाद इज़ हदैतना, ए हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना हिदायत देने के बाद। यानी उस इंसान को हिदायत की कदर आ जाती है, उसको हर वक्त ये डर रहता है कि हाय कहीं ये हिदायत की नेमत मुझसे छीन ना जाए, हाय कहीं ये हिदायत मेरे हाथ से ना चली जाए। देखें हिदायत की असल कदर पता है किसको आती है, जिसने कभी बेदीनी देखी हो, जिसने गुमराही के अंधेरे देखे हो, जिसने बदबख्ती के दिन देखे हो। इसीलिए आप देखते ना बाज इतने, यानी बहुत ही बुरे उससे जिंदगी से निकल के इस्लाम की तरफ आते हैं, बहुत ही गुमराही में थे, बहुत ही गुनाहों में पड़े हुए थे, और फिर वो इस्लाम लाते हैं, फिर ऐसे लाते हैं कि उनकी जिंदगी जैसे रोशन हो जाती है, क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी होती है, उनको पता होता है कि हम कहाँ से निकले, किस दलदल पे फंसे हुए थे वहां से निकले, उनको फिर बड़ी कदर होती है। और जिनको पक्का पकाया मिल रहा है, जिनको हमेशा से ही मिल रहा, जिन्होंने सारी चीजें पैदा होते से ही देखी हैं, उनको कोई कदर भी नहीं होती, उनको पता ही नहीं कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी गुमराही से बचा लिया ये हिदायत दे के। तो इस हिदायत को वो महसूस कर सकता है जिसने दुखन देखी हो गुनाहों की, जो उसने कभी देख कर आया, उसको पता होगा ये मुझे कितनी बड़ी दौलत मिल गई। तो ये सोचें कि जब वो इल्म में रसूख पा लेते हैं ना, उनको ये हिदायत मिल जाती है, तो उनको ऐसे लगता है जैसे धूप से ठंडी छांव में आ गए, फिर वो हर वक्त डरते रहते हैं, आए कहीं दोबारा वो पहली जिंदगी की तरफ ना लौट जाऊं, आए कहीं दोबारा उन्हीं अंधेरों में ना चला जाऊं, आए कहीं मेरा ईमान ना चला जाए। और वाकई जब रसूख आने लगता है तो वाकई ये फिक्र सबसे ज्यादा होती है इंसान को। और उसने ऐसी गुमराही के अंधेरे नहीं भी देखे ना, जब इंसान रोशनी में आता है ना, एक अंधेरी जिंदगी थी, जहालत की भी तो अंधेरे होते हैं, अंधेरी जिंदगी से ये हिदायत की रोशनी जब इंसान पाता है ना, तो फिर वो कहता है आई ये मैं कहाँ पड़ी हुई थी, तो शुक्र है अल्लाह ने मुझे ये राह दिखा दी। अल्लाह अब दोबारा ना इस पे भेज देना वापस। क्यों? इसलिए कि दिलों का क्या पता है। आपको पता है हज़रत असमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन पूछा, क्या दिल उलट पुलट हो जाता है? आपने फरमाया, हर इंसान का दिल अल्लाह की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान। अब ये भी मुतशाबे में बात है, ठीक है, उंगलियां हम नहीं जानते अल्लाह की उंगलियां कैसे हैं क्या, बस जो हदीस में आ गया हमने बस मान लिया, तो दो उंगलियों के दरमियान है, अगर चाहे कायम रखे अगर चाहे फेर दे। सुभान अल्लाह, ये दिल जो है ना ये फिर जाता है, इसीलिए इसका नाम कल्ब है। कल्ब का मतलब होता है वो चीज जो उलट पुलट होती रहती है। एक और हदीस में आता है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने से रिवायत है कि आपने फरमाया, दिल की हालत ऐसी है जैसे कोई पर है, पर नहीं होता फेदर, पर किसी चटियल मैदान में पड़ा हुआ है और हवाएं उसको उलट पुलट कर रही हैं। पर की क्या हैसियत है मुझे बताए। इसी तरह ये दुनिया के फितने हैं ना, ये हवाएं हैं, ये उठा गए वो दिलों को इधर से उलट पुलटती। लोग इंटरनेट पे बैठते हैं, सर्च किया, पता नहीं क्या दिमाग के अंदर आया, क्या चीज पढ़ ली, उसके बाद ईमान ही जाता रहता है। किसी से बात की, उसकी बातों से इतने मुतासिर हुए, किसी ने कहा कि मैं अच्छे भले मुसलमान थे, पाकिस्तान में थे, प्रोफेसर कोई इस तरह कहीं पढ़ने के लिए जा रहे थे, और उन्होंने जहाज में गए हैं यूके, और रास्ते के अंदर एयर होस्टेस से बातें हुई, और उसने कहा तुम्हारे नबी तो ऐसे ही ऐसे ऐसे, कहते जिस वक्त मैं बैठा था तो मुसलमान था, जब जहाज से उतरा तो इस्लाम जा चुका था। इतने डाउट्स थे इस्लाम के बारे में, दिल का नहीं पता होता, ये उलटता पुलटता रहता है। आज अगर दिल कुरान में लग रहा है, शौक आ रहा है इसका, तो कल का कोई पता नहीं है। इसलिए इंसान डरे इस बात से, जब तक मौत नहीं आ जाती ना, उस वक्त तक कोई किसी के बारे में फाइनल नहीं कह सकता कि इस क्या है। किसी के लिए ना सोचो कि जो कोई जिंदा है कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे ना, आपको क्या पता इसका कल कैसा है, आपको पता इसके ऊपर इसको मौत किस पे आती। हाँ, जो जा चुके हैं और वो मकामात पा चुके, जैसे सहाबा हैं, तो आप उनके जैसी ख्वाहिश कर सकते हैं कि अल्लाह ऐसा बना दे, क्योंकि उन्होंने उस सरहद पार कर ली, आपको पता चल गया कि वो ईमान पे दुनिया से गए, बाकी किसी का नहीं पता है। आज दिल हिदायत पे है, कल को अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ कर देना, अल्लाह हमारे पास तो और कुछ है ही नहीं सिवाय इसके, कुछ भी नहीं है, तो है अल्लाह कभी हमसे ये ना छीनना। अब देखिए ना, जिसको कुछ पता होगा वही जानेगा ना कि ये कितनी बड़ी नेमत है, और जिसको पता ही ना हो, उसको पता ही नहीं हिदायत क्या, उसको क्या चीज की कदर होगी, उसने ना इसका टेस्ट चखा ना जाना, वो तो फिर बेपरवाह होगा। तो बड़े बड़ों को पलटते हुए देखा है मैंने, बड़े बड़ों को कुरान भी पढ़ लिया, ये भी कर लिया, उसके बाद ऐसे पलटे ये वापस आने का नाम ही नहीं लेते। एक शख्स का वाक्या पढ़ा कि वो बड़ा अच्छा था, बड़ा नेक था, अल्लाह वालम क्या उसके हालात है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जब मौत की सख्ती आई तो कितने दिन वो, एक वाक्या कहीं लिखा हुआ था ये, कि कितने दिन वो मौत की सख्ती में रहा, फिर कहने लगा अपने घर वालों को कुरान लेकर आओ। जब वो कुरान लेकर आए तो कहता है मैंने इसका इनकार किया, और उसके बाद उसकी जान निकल गई। यू नेवर नो, ये दिल है ना, इसके अंदर क्या ख्याल आते हैं, क्या हमें नहीं मालूम, तो हर वक्त डरते रहे, हर वक्त ये अल्लाह ताला मुझे माफ कर देना, मुझे फितनों से बचाना। एक रिवायत में ये भी आता है, फिर हजरत असमा ने कहा, या रसूलुल्लाह मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दे कि मैं अपने अल्लाह से मांगा करूं। आपने फरमाया ये दुआ मांगा करो, ए अल्लाह, ए मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे दिल का गुस्सा रंज और सख्ती को दूर कर दे, मुझे गुमराह करने वाले फितनों से बचा ले। हमें नहीं पता ना ये फितने जो हैं, किस वक्त इंसान किसी की बात से मुतासिर हो जाए, किस वक्त इंसान किसी को मटेरियल को पढ़ा उससे मुतासिर हो जाए, किस वक्त किसी ऐसे इंसान के से उसका पाला पड़ जाए जो उसको अल्लाह ना करे गुमराही की तरफ ले जाए। इसके अंदर हमें ये भी एक बात और भी समझ आती है, और वो ये कि हम कभी किसी से मायूस नहीं हो सकते, क्योंकि दिल है ना, दिल आज वो दिल किसी तरफ पलटा हुआ है तो कल को वो ईमान में भी बहुत आगे जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते इसके तो बस बात ही छोड़ दो, इसने तो कभी सही होना ही नहीं, नहीं हम नहीं कह सकते, आप किसी से भी उम्मीद छोड़ नहीं सकते, समझ आए। और कोई भी जो किसी हिदायत को पा गया या ईमान रखने वाला, वो भी कभी बेखौफ नहीं हो सकता। तो ना उनसे उम्मीद छोड़ सकते। अब ये तो कभी मुसलमान ही नहीं होने, नहीं, ये तो बड़ा आगे निकल चुका। नहीं, ये नहीं कहना चाहिए। अल्लाह अकबर। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम जब रात को जागते थे ना, तो एक बड़ी प्यारी दुआ किया करते थे। फरमाते थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका। मेरे ख्याल आपको मतलब तो इंशाल्लाह आता ही होगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका अस्तगफिरुका ली ज़म्बी व अस्अलुका रहमतन अल्लाहुम्मा ज़िदनी इल्मा वला तुज़िग़ क़ल्बी बादा इज़ हदैतनी वहबली मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। यानी ये जो आखिरी बात, सुभान अल्लाह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मांगते थे। तो इसके बाद हमें अपनी इस दुआ को याद करना, इसको मांगा करना। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम, उनको तो जरूरत भी नहीं थी, लेकिन वो कसरत से क्या दुआ मांगते थे, बहुत ज्यादा मांगते थे। या मुकल्लिब अल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनी का, ए दिलों को उलट फेर करने वाले, मेरे दिल को साबित कर दे अपने दीन पे, अल्लाह इसके ऊपर जमा देना, दिल ना कहीं पलट जाए। उनको क्या जरूरत थी ये दुआ करने की, हमें कितनी ज्यादा जरूरत है इस दुआ की। अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह ताला हमसे इस नेमत को कभी ना छीनना, हमारे दिलों को कभी टेढ़ा ना करना। देखिए ये जो रासिखूना फिल इल्म की बात है ना, ये दुआ करते। तो इसलिए रासिख बनना है इल्म, रासिख बनना है इल्म के रास्ते से इंसान हिदायत पा सकता है। इल्म इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि कोई नेमत इसे बढ़ के नहीं है। वो ये मैं कैसे कह सकती हूँ, अब आप कहें कि ये आप कहाँ से ये कह सकती हैं, यहाँ पर ऐसी किताबी बातें, नहीं, इसके सबूत है। वो सबूत क्या है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को जो दुआ सिखाई है ना, उसमें ये नहीं फरमाया कि ऐ नबी आप मेरे से मांगे कि मैं आपको दौलत ज्यादा दे दूं, आपको सेहत ज्यादा दे दूं, मैं आपको मसलन है कि औलाद दे दूं, या मैं आपको कोई और। अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया, कुल ए नबी कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, वो ज्यादा कर। और बहुत सी चीजें ज्यादा हो सकती थी, उनकी दुआ हो सकती थी, लेकिन फरमाया ए नबी आप ये मांगे, इससे बड़ी इसका मतलब है कि कोई दौलत नहीं है। हम इसको छोड़ के माल के पीछे जाते हैं ना, असल दौलत वो नहीं, असल दौलत ये है, क्योंकि माल इंसान को यहीं छोड़ जाएगा, मगर इल्म की दौलत उसके साथ कब्र में जाएगी। ठीक है, इंसान को जब मुनकिर नकीर सवाल जवाब करेंगे तो वो कहेगा कि मैंने, वो जब सही जवाब देगा तो वो पूछेंगे तुम्हें कैसे पता, कहेगा मैंने इल्म लिया था कुरान का, उससे मुझे पता चला। ये इतनी बड़ी दौलत है, किसका माल उसके साथ जाता है बताएं कब्र में, और ये माल तो लुट जाता है यहाँ पे दुनिया में भी, इल्म की दौलत लुटती नहीं है, ये जितना किसी को देंगे ना उतनी बढ़ती जाएगी। तो वादा इजादी था वह हब लाना मिल लदुन का रहमत, ए अल्लाह अपने पास से रहमत के रहमत तू हमें अता फरमा। यानी अल्लाह हमें तेरी रहमत की जरूरत है, रहमत का खजाना अल्लाह के पास है, अल्लाह ना किसी पर रहमत करे तो कहीं से मिल नहीं सकती है। तो ए अल्लाह ये तू अपने रहमत के खजानों में से हमें अपने पास से, यानी अपनी रहमत के खजानों में से हमें अता फरमा। तो इसका मतलब है कि रासिखूना फिल इल्म को पता है ना कि अल्लाह के पास ये, मिल लदुन का कहा ना, अपने पास अल्लाह के पास ये रहा, और वो ही हिदायत भी दे सकता है और वो ही हिदायत में इजाफा भी कर सकता है। इन्नक अंतल वहाब, बेशक अता करने वाला सिर्फ तू ही है। और वहाब किसको कहते हैं, वो देने वाला जो इन रिटर्न कुछ नहीं लेता। तो हमारे पास कुछ देने को है ही नहीं, जो बगैर मुआवजे के देता है, कोई फीस नहीं है, वो है वहाब। फ्री में देता है और बहुत ज्यादा देता है और बिन मांगे देता है। तो अल्लाह तू तो वहाब है, अल्लाह तू हमें अता फरमा अपनी रहमत में से, और अल्लाह की रहमत में हर चीज ही आ जाती है। देखिए अल्लाह की रहमत में जन्नत भी आ गई, अल्लाह की रहमत में दुनिया की भी जो भी आसानियां हैं वो भी आ गई। दुनिया की भी खैर और आफियत अल्लाह की रहमत ही है, हिदायत भी अल्लाह की रहमत। जिसको अल्लाह की रहमत में से जर्रा भी मिल गया उसके तो नसीब खुल गए। रब्बना इन्नक जामिउन नासि लियौमिन ला रैबा फीह, ऐ हमारे रब बेशक तू जमा करने वाला है लोगों को एक दिन जिसमें कोई शक नहीं। यानी वो आखरत के अकीदे पे ईमान रखने वाले हैं, उनका यकीन है कि एक दिन है। इन्नक जामिउन, बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है। लियौमिन ला रैबा फीह, ये दिन है जिसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब है कि इनको यकीन होता है कि कयामत का दिन है, और अल्लाह ताला ये कुदरत रखता है कि वो सबको जमा करे। इसीलिए तो वो रो रो के अल्लाह की तौफीक मांगते हैं, उसका तावुन मांगते हैं। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह तू तो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह तूने जो वादा किया है, जो मुलाकात का भी वादा है ना कि अल्लाह से एक दिन मुलाकात होनी है, इसका अल्लाह ने वादा किया है। वो अपॉइंटमेंट टाइम है, दुनिया के अपॉइंटमेंट्स का टाइम टल सकता है, आप कैंसिल कर सकती हैं, आप डिले कर सकती हैं। अल्लाह के साथ मुलाकात की जो अपॉइंटमेंट का टाइम है ना, वो डिले नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि हम जानते हैं अल्लाह, हम मानते हैं, हमें यकीन है कि एक दिन तूने जमा करना है। अल्लाह तू जब लोगों को जमा करेगा, तेरा वादा तो पूरा होके रहने वाला है, तू नहीं अपने वादे के खिलाफ करता। तो अल्लाह में हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना, अल्लाह हमारे हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को ऐसा ना कर देना जैसे कुछ लोगों के दिल टेढ़े हो जाते हैं, ये वो हिदायत को खो देते हैं या उनकी हिदायत उनके हाथ से चली जाती है, सीधा रास्ता भूल जाते हैं, कहीं के कहीं निकल जाते हैं। अब सोचे ना इसमें कितनी आजजी है कि इंसान ये नहीं समझ रहा, नहीं हाँ जी मैं तो बड़ी अकल वाली हो गई, अब मुझे सब आ गया, अब नहीं मुझे कोई फर्क पड़ता, अब नहीं मुझे कोई कुछ कह सकता, अब नहीं मुझे कोई हिला सकता। जी नहीं, कोई तकब्बुर नहीं है अल्लाह, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें यहाँ तक की हिदायत दी है, इस जन्नत तक पहुंचा दी है, हमारा अपना थोड़ी कोई कमाल है। तो इससे पता चलता है कि हिदायत मिले या आपको इल्म मिले तो इसमें अल्लाह के सामने और झुक जाए और अल्लाह का एहसान माने, शुक्र अदा करें, और कभी अपनी अकल अपनी उसमें अपनी हिदायत के ऊपर घुमंड में ना आए। ये भी सिर्फ अल्लाह ही की तौफीक होती है। और अभी ये भी नहीं पता कि अल्लाह माफ कर दे हमें, कहते हुए भी डर लगता है कि ये नहीं पता कि को हिदायत पे कौन कौन कायम रहता है और कौन नहीं। तो इसमें आप अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, अल्लाह मैं नहीं रह सकती, अल्लाह तू मुझे रखना, मेरा दिल ना कहीं टेढ़ा हो जाए। अल्लाह हमें माफ करना। हम सब इसके ऊपर इस दुआ को एक दफा कहें, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इन अल्लदीन कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लन तुगनी अनहुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिन अल्लाह शैया, उनको ना तो उनके माल काम आने हैं ना उनकी औलाद काम आने। ये किस चीज के ऊपर कहा गया आपको पता है? जब बदर हुई थी ना, बदर के अंदर क्या हुआ था उससे पहले थोड़ा सा अगर आप इसको बैकग्राउंड जहन में लेकर आए कि काफला जा रहा था अबू सुफियान का और किस तरह वो निकल गया, और ये जो काफला था ये भेजा भी मुशरिकीन ने किस तरह था कि मुसलमानों के जो रह गए हुए थे वहाँ पे माल और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज थी उन सबको लेकर और इस काफले में उससे माल लगाया था, तो बेसिकली मुसलमानों का माल यूज़ किया था। और जब वो काफला लेकर अबू सुफियान आ रहा था और उसने अबू जहल को पैगाम भेजा कि मैं तो खतरे में हूँ, मेरी हेल्प के लिए आओ, तो मक्का वालों ने अपना माल सारा अपना ये दिया था ताकि मुसलमानों का मुकाबला कर सके। अल्लाह ताला ने फरमाया ये माल भी नहीं कोई काम आने, ये औलाद भी नहीं कोई काम आने, ये दोनों ही काफरों के कोई काम नहीं आने वाले। आज लोग काफरों के माल को देख के रीझते हैं और उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, हाँ इनके पास कितना कुछ है, इन्होंने कितनी तरक्कियां कर ली, हाँ ये देखो जरा उनके बच्चे कितने बड़े फलाने ओहदे पे पहुंच गए, ये इनको कुछ नहीं काम दे सकता। ये कहाँ से कहाँ इन्होंने देखो ये भी पा लिया ये भी कर लिया, हम ये ऐसे रह गए। जो कुफर के साथ कोई चीज काम आने वाली नहीं, दुनिया में इंसान की सारी जिंदगी इन्हीं दो चीजों के पीछे तो खपती है, माल और औलाद। या माल कमाता है और खर्च करता है औलाद के ऊपर, कहता है औलाद के लिए रह जाए, लेकिन ये अल्लाह के यहाँ कोई काम नहीं आएगी। अल्लाह के यहाँ कोई ये जाके नहीं कह सकेगा अल्लाह ये मेरा सारा माल ले ले लेकिन मुझे आज छोड़ दे, अल्लाह ये मेरी औलाद ले ले लेकिन मुझे आज छोड़ दे, ना औलाद बचा सकेगी। समझ आए? अगर मुसलमान का भी वही रवैया होता है जैसे कि काफिर का है, ये काफिर का रवैया क्या होता कि ये माल का कमाना उसको अल्लाह ताला से और हिदायत पाने से दूर कर देता है, और मुसलमान भी ऐसे ही करता है, और औलाद को भी किस काम में लगाया गया कि सिर्फ उनकी दुनिया की फिक्र है, उनकी आखिरत की कोई फिक्र नहीं, ना आखिरत के काम का उनको बनाया, सिर्फ यहीं का बना दिया, यहाँ पे ओहदे पा लें, यहाँ पे कमाइयां कर लें, यहाँ पे हमारे बाजू बन जाए बस, तो काफरों वाला ही रवैया है। तो फिर मुसलमान का भी माल और औलाद तब काम आएगी जब अल्लाह के रास्ते में लगाए, माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, औलाद को अल्लाह के काम का बनाया, औलाद नेक हो तब वो काम आ सकती है, अदरवाइज नहीं। तो काफरों का तो बिल्कुल ही, खुद भी डूबे और उनको भी ले डूबे। इसलिए बताया गया कि अपनी इन ये जो दो चीजें हैं ना, इनको रुकावट ना बनने दो अल्लाह के रास्ते में। आज तो ये तुम्हारे काम आ सकती है, कल को ये कोई काम नहीं आएंगी, ये माल डुबो देगा तुम्हें, ये तुम्हें रब की तरफ नहीं आने देता ना। कभी जॉब है, कभी दुकान है, कभी कारोबार है, कभी घर बार है, नहीं घर की चीजें, घर का काम, घर के ये माल नहीं काम आना। औलाद है तो औलाद के ये काम है, औलाद को वहां लेकर जाना है, औलाद की ये पढ़ाई, ठीक है सब चीजें हैं, लेकिन उनको अल्लाह का बंदा बनाओ। आज तो बंदों का बंदों से मामला है ना, तो बड़ा फखर है, बड़ा मान है, बड़ी बड़ाइयां हैं, हमारे पास इतना पैसा, हमारे पास ये प्लॉट, हमारे पास ये गाड़ियां, हमारे पास ये जायदादें, हमारे पास वो वेकेशन होम, हमारे बच्चे इस ओहदे पे पहुंच गए, हमारे बच्चों ने ये तरक्कियां कर ली हैं, वो जी फलां जगह पे वो वजीर है, वो फलां मेरा बच्चा डॉक्टर है, फलां मेरा बच्चा ये है। आज तो इसके ऊपर शेखियां है ना, क्योंकि ये बंदों का बंदों से मामला है। जब बंदे का रब के साथ मामला होता है तो इन चीजों की कोई अहमियत नहीं होती कि किसके पास कितना पैसा और किसका बच्चा कितने होते पे। ज्यों ही गैब का पर्दा उठेगा ना, ये तो अभी इसलिए पर्दा पड़ा हुआ ना, गैब का पर्दा उठेगा तो ये चीजें जीरो नजर आएंगी, जीरो। जिस जान को घुला के रख दिया इस माल को कमाने के पीछे और इस औलाद के पीछे, ये दोनों कोई नजर भी नहीं आने, नजर भी नहीं आएंगे। और हम भी सोचें कि क्या माल और औलाद को हमने जिंदगी में प्रेफरेंस दी हुई है, ये हमें अल्लाह से दूर रखने वाली तो नहीं। एक तरफ माल कमाने की बात हो या औलाद की कोई चाहत हो और दूसरी तरफ अल्लाह का कोई हुक्म हो, तो किसको प्रेफरेंस देते हैं? दीन की कोई बात हो और दूसरी तरफ जॉब की कोई बात हो या बच्चे कुछ जिद कर रहे हैं, किसको प्रेफर करते हैं, किसको तरजीह देते हैं? नहीं बच्चे कह रहे हैं ना, बच्चों का तो मानना ही पड़ता है। याद रखें फिर ये बच्चे काम नहीं आने, और अगर देखनी है इसकी मिसाल तो आगे आ रही है, पहले इसको खत्म कर देते हैं। वह उलाए का हम वकूद उन्नार, ये सिर्फ आग इनका ठिकाना होगी और आग का ईंधन बनेंगे, यानी इनसे आग जो झोंकी जाएगी, आग को आग का फ्यूल बनेंगे, इनसे आग भड़काई जाएगी। ये काफिर जो खुद भी कुफर पे रहे, उन्होंने सारी जिंदगी माल कमाने में लगाई, औलाद को भी ऐसा ही बनाया, तो रद्दी कहाँ जाती है, गार्बेज कहाँ जाता है, उसको कोई संभाल के तो नहीं रखता। इन्होंने भी गार्बेज कर दी अपनी जिंदगी। तो इनसे आग जलेगी। आप देखें, आप कोई कह सकता है, देखें ये भी मुतशाबे बात में से है ना, कोई कह सकता है ये कैसे हो गया, इंसान से कैसे आग जल सकती है, इंसान तो खुद जल जाएगा। नहीं, ये आग को भड़काएगा, ये मरेगा नहीं। कदा भी आली फिरौना, अगर तुमने सीखनी है ना बात, अगर तुमने समझनी है ना बात, तो तुम अपने ऊपर क्या फखर करते हो, हम बड़ी चीजें, हमारे माल, हमारी औलादें। तुमने देखना है तो जरा उनको देखो जिनका डंका दुनिया में बजता था। आज भी फिरौन का नाम, जो इस्लाम में नहीं, वो इस्लाम के अलावा जितने लोग हैं उनसे पूछ लो, हर एक फिरौन को जानता है। फैरो कौन नहीं जानता, जिसका दीन से कोई ताल्लुक भी नहीं वो भी जानता है। तुम देखो फिरौन को, आले फिरौन को कैसे थे वो, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा इकतदार रखता था। वो फिरौन रब की तरह पूजा जाता था उसको, उसके माल की कोई कमी नहीं थी, इकतदार की कमी नहीं थी, स्टेटस की कमी नहीं थी। आले फिरौन की से इतनी थी अपनी सोसाइटी में, उनका रोब और दबदबा इतना था, जो चाहते थे करते फिरते थे। वल्लदीना मिन कबलिहिम, और जो उनसे पहले भी आए उनको जरा देख लो, कौन आए थे उनसे पहले? नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग, उन्होंने भी बड़े सीना तान के कहा था कि हम नहीं मानते। और आद को देखो, जो कहते थे हम जैसा कोई है तो सामने आए, हम जैसा कोई है ही नहीं, ऐसे थे वो। समूद देख लो, कौमे शुएब देख लो, जो इकोनॉमी की यानी टॉप पे थी, बूम करती थी उनकी इकोनॉमी, जबरदस्त। इबरत हासिल करो उनसे, उन्होंने भी अल्लाह की आयात को झुटलाया था, उन्होंने भी कुफर किया था। अब अपने आप को बड़ी चीजें समझते थे, बड़ा तकबर था उनको अपने माल पे, अपनी औलादों पे, अपने जत्थों पे। अल्लाह ने देखो फिर, कज़्ज़बू भी आयाती ना, उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने फिर क्या किया, उनको पकड़ लिया उनके गुनाहों की बदौलत। हम सोचते ना वैसे ही गर्क हो गए, वैसे ही तूफान आया उसके अंदर हो गए, वैसे ही जलजला आया उसके अंदर ऐसे हो गए, बेचारी वो सारी कौम खत्म हो गई। नहीं, अल्लाह ने पकड़ा उनको, यहीं पे आके हमारी आंखें बंद हो जाती है ना, कि जब हम असबाब को देखते हैं, हमें क्यों हमारी मत मारी जाती है कि हर चीज में हम कहते नहीं वो ऐसा हुआ था ना इसलिए ऐसा हो गया, कोरोना इसलिए आया क्योंकि वो वहां पे उन्होंने ये खाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने लैब के अंदर पता नहीं क्या कर दिया। ओ खुदा के बंदो, ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला कुराने पाक में हर जगह फरमाता है, अल्लाह ने फाखदहुमुल्लाह बिज़ुनूबिहिम, कोई तुम्हारे भी गुनाह होंगे जिसके ऊपर कोई पकड़ आई है कि नहीं, उसकी तरफ नहीं देखना बस, ये वजह बन, कोई अपने आमाल की तरफ भी तो देखा करो। अगर तो तुम्हारे आमाल बहुत नेक थे, बहुत अच्छे थे, तो ठीक है, एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। लेकिन अगर तुम्हारे आमाल वाकई, तुम समझते हो ना कि हमारे अंदर गलतियां थीं, तो अल्लाह की पकड़ है। अल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सख्त सजा देने वाला। फिर समझ जाओ कि अल्लाह नाराज है, उसकी तावीलें ना करो, जस्टिफिकेशन ना दो, ना निकालो यहां से उसने ऐसा कर दिया, उसने वो कर दिया। नहीं, कहो कि हमारा जुर्म हुआ है, हमने किया है गलत, अल्लाह हम माफी मांगते हैं। जिस वक्त आप इधर उधर देखना शुरू कर देते ना, क्या वजह बनी, ठीक है वजूहात जानना अपनी जगह है, मादी असबाब भी कोई होते हैं, लेकिन असल पीछे कौन है, आज तक क्यों ना ऐसा हुआ था, कोई है ना ताकत पीछे, उसको छोड़ के इन चीजों में, ये साजिश है, वो फलां है, हर एक अपनी अपनी बोली बोलता जा रहा, और इस चीज की तरफ आते ही नहीं है कि अपने अंदर झांक के देखें हमने कुछ गलत किया है, और हमें अल्लाह को मनाना है। तो उन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, उन्होंने नहीं मानी थी ना हमारी निशानियों, हमने निशानियां नाजिल की, उन्होंने नहीं माना, तो अल्लाह ने पकड़ लिया उनको, उनके जुर्म पे पकड़ा ना। तो जब जराइम होते हैं ना ऐसे, इस किस्म के गुनाह होते हैं, तो अल्लाह की पकड़ आ जाया करती है, मान लो इस बात को। सारी कुरान के अंदर इन कौमों के वाकयात बताते हैं कि अल्लाह की पकड़ आती है। हाँ, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को वाइप आउट नहीं करेगा इस दुनिया से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से, वरना शायद अब तक खत्म हो चुकी होती, क्योंकि इन्होंने तो सबके ही गुनाह अपने अंदर ले लिए। कुल लिल्लदीन कफरू सतुग्लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बिसल मिहाद, कह दीजिए काफिरों से, ऐ नबी आप इनको कह दें तुम गालिब आओ, मगलूब हो जाओगे, तुम पे गलबा पा लिया जाएगा, और तुम इकट्ठे किया जाओगे जहन्नम की तरफ। ये किसकी बात है? अब शाने नजूल इसका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सीरत इब्ने इसहाक में है कि जब बदर की जंग से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह याब होके वापस आए, आपको पता है यहूद का एक कबीला रहता था बनू कैन का, उनके बाजार में यहूदियों को जमा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फरमाया यहूदियों इससे पहले कि कुरैश की तरह तुम्हें भी जिल्लत और पसपाई देखना पड़े तो इस्लाम कबूल कर लो। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि आपका तो मुकाबला अभी उन कुरैशियों से हुआ है ना, वो जंग को जानते नहीं थे इसलिए उन्होंने मतलब शिकस्त खाई है, लेकिन अगर आपकी लड़ाई हमसे होगी ना तो हम बता देंगे कि लड़ाई होती क्या है और मर्द कौन होते हैं। तो तब ये आयत नाजिल हुई कि इन काफरों से कह दो, यानी अहले किताब मुराद हैं, तुम मगलूब भी होगे और तुम इकट्ठे भी किए जाओगे जहन्नम की तरफ। और जिसका भी रवैया इसी किस्म का होगा अल्लाह की आयात के मुकाबले में, और जिसका भी यही रवैया होगा कि वो अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को इतना बड़ा वो समझे कि अल्लाह की आयात के आगे खड़ा हो जाए और ना माने इनको, तो उसका यही अंजाम है। कद कान लकुम आयतुन फी फ़ीअतैन इल्तक़ता, तुम्हारे लिए निशानी है इसमें, यानी किसके लिए निशानी है, जितने जो उस वक्त के काफिर भी थे वफ्ते नजरान भी हम सब भी, सब के लिए निशानी है किसमें, फ़ीअतैन दो ग्रोहों में, इल्तक़ता जो मिले जिनमें जंग हुई वो कौन दो ग्रोह थे, फ़ीअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह व उख़रा काफ़िरतुन, एक ग्रोह था जो अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाला था और दूसरा ग्रोह काफिर था। ये कब की बात हो रही है? बदर की, बदर की जो जंग थी इसमें इतनी बड़ी निशानियां हैं लोगों के लिए कि आज तक हिस्टोरियंस हैरान है कि कहाँ 313 और कहाँ ऑलमोस्ट 1,000 लोग, एक के मुकाबले में मुसलमान एक और उसके मुकाबले में तीन थे जिनसे मुकाबला था, जिनसे जंग थी, और कैसे मुसलमान जीत गए, बहुत बड़ी निशानी है ना इसमें। तो अल्लाह ताला ने बताया एक ग्रोह था, देखिए यहाँ पे सुभान अल्लाह ये नहीं कहा कि एक ग्रोह मुसलमानों का था दूसरा ग्रोह काफरों का था, ऐसे ही होना चाहिए था ना, कहा एक ग्रोह था जो लड़ रहा था अल्लाह के लिए, इसलिए कि मुसलमान भी सारे अल्लाह के लिए नहीं लड़ते। कोई मुसलमान है जो अपनी बहादुरी के लिए लड़ रहा है, कोई मुसलमान है जो अपने कबीले के नाम के लिए लड़ रहा है, कोई मुसलमान है हो सकता है अपने कोई तमगे या उसके लिए लड़ रहा, एक ग्रोह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था और दूसरा काफिर ग्रोह था, सुभान अल्लाह। और आप इसमें देखें, हाँ जब कहा जा रहा है एक ग्रोह तो कातिलु फी सबीलिल्लाह, तो इस ग्रोह में चेहरे नजर आ रहे हैं? किसी का चेहरा नजर आ रहा है? किसी का भी नहीं आ रहा, सिर्फ क्या नजर आ रहा है, फी सबीलिल्लाह। इसलिए जब अल्लाह ताला के दीन के लिए कोई काम करने लगो तो नामों पे ना जाओ, मेरा नाम हुआ कि नहीं, मेरा नाम नजर आया कि नहीं, मैं प्रोमिनेंट हुई कि नहीं, फी सबीलिल्लाह सब मिल के वो काम करते हैं फिर। और उखरा काफिरा तुम, दूसरा कुफर वाला है, उसमें भी कोई चेहरा नहीं नजर आ रहा, सिर्फ कुफर ही नजर आ रहा है। या रौना हम मिथलई हम रौयल आईन, वो देख रहे थे उनको दुगना अपने से देखना आंख का, यानी उनकी आंख का एक वो था, रियलिटी नहीं थी लेकिन आंख का आंख ऐसे देख रही थी, यानी काफिर मुसलमानों को देख रहे थे तो उनको मुसलमान अपने से दुगने लग रहे थे। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, वो जिसको चाहे जितना बढ़ा के दिखा दे, लेकिन इंसान की जो नजर है ना उसमें भी अल्लाह की कुदरत है, हम किस चीज को कैसे देख रहे हैं वो अल्लाह जैसे दिखा दे। अब उनको मुसलमान कैसे नजर आ रहे हैं, वो 1,000 थे तो मुसलमान उनको 2,000 नजर आ रहे हैं, और मुसलमानों को वो कैसे नजर आ रहे हैं, मुसलमान 313 हैं तो उनको वो अपने से दुगने नजर आ रहे हैं तो 600 नजर आ रहे हैं, हालांकि वो तो 3 गुना थे, सुभान अल्लाह। तो वल्लाहु युअय्यिदु बिनसरिही मन यशा, अल्लाह है जिसकी चाहे वो मदद करे, जिसको चाहे कुव्वत दे, जिसको चाहे उठा दे, जिसको चाहे गिरा दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, ये अल्लाह ताला की मदद होती है। लेकिन अल्लाह ताला भी मदद किन की करता है, जिनमें इखलास हो, जो फी सबीलिल्लाह करने वाले हो, जिनकी नियतों में ये खोट ना हो, मेरा नाम, मेरी ये, मेरी वाह, मैं ये नहीं, वो सब एक थे और इखलास था उनके अंदर। मुखलिस जमात छोटी भी है ना तो देखो वो बड़ी जमात के ऊपर गलबा पा गई, और इखलास नहीं है और सिर्फ नामों की दौड़े लगी हुई है, अपना अपने आप को नुमाया करने की दौड़ है, तो फिर लाखों करोड़ों का भी लश्कर हो तो वो किसी काम का नहीं है। जैसे आज दुनिया के अंदर मुसलमान जो है सेकंड बिगेस्ट रिलीजन इस दुनिया में इस्लाम है, लेकिन आज क्या है इनकी वैल्यू, खसो खाशाक की तरह नो वैल्यू, कोई कदरों कीमत नहीं है। और वजह क्या है, कोई इखलास नहीं, ईमान की हरारत नहीं, दूर चले गए अपने दीन से भी, नाम के मुसलमान। जब ईमान था और इखलास था तो फिर देखें मुसलमानों के पास, अब थोड़ा सा कंपैरिजन ही करके देख लें आपको पता चले, मुसलमानों के पास कोई ऐसा असला नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको कोई कहे कि हाँ भाई बड़ी कुव्वत है। मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे और 70 ऊंट थे, उनके पास 100 घोड़े थे और 700 ऊंट थे, मुसलमानों के पास सिर्फ 6 जीरे थी और सिर्फ 8 तलवारें थी, 313 भी ऐसे नहीं थे किसी ने डंडा पकड़ा हुआ है, किसी ने कोई नेजा पकड़ लिया, तलवारें सिर्फ 8 थी। आप सोच सकते हैं कि ये लड़ने के लिए आए हुए हैं और उनके पास असला भी नहीं है, उनके पास सवारियां भी नहीं है, और तादाद भी इतनी कम है, लेकिन फिर भी गलबा पा गए। इन्ना फी ज़ालिका इबरतन लिउलिल अबसार, इसमें इबरत है उनके लिए जो अहले बसीरत है, जो देखने वाले हैं, वो वाकई दिल की आंख से देखते हैं, इबरत की निगाह रखते हैं, उनको इस वाक्य में बड़ी इबरत मिलेगी। और हम देखते हैं कि जब आप वाकई इस तरह से देखें ना तो आपको पता चल जाता है कि नो मैच, लेकिन इसका मतलब अल्लाह ही की ताईद हमें तलाश करनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास ज्यादा शानो शौकत, तो काफिर भी निकले थे, उनके पास गाने बजाने वालियां थी, उनके पास तो नाचने वालियां थी, तवायफें थी, उनके पास ऐसे ढोल बाजे थे, गाजे थे, वो उसके साथ बड़े तमतराक से निकले, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुसलमानों के पास क्या था, उनके पास तो कपड़े भी पूरे नहीं थे, उनके पास असलहा नहीं था, उनके पास सवारियां नहीं थी। तो आज किस चीज की जरूरत है, अल्लाह की ताईद की, जिसके साथ अल्लाह की ताईद हो जाएगी ना वो कामयाब हो जाएगा, और अल्लाह की ताईद कैसे आती है ये भी पता चल गया हमें। तो तलाश किसको करना है, हमेशा चीजों को ना देखो, हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ऐसे नहीं, अल्लाह की ताईद को तलाश करो, अल्लाह ताला हमें अपनी ताईद अता फरमाए, अल्लाह का साथ हो जाए तो सब मुश्किलें आसान है, और उसका साथ ना हो तो बड़ी से बड़ी जमातें भी शिकस्त खा जाती हैं। शैतान इंसान को फील कराता है जब वो अल्लाह के रास्ते पे भी चलता है कि तुम तो अकेले हो, तुम तो कम हो, तुम्हें कौन पूछेगा, तुम्हें कौन देखेगा, हालांकि देख लें जब इखलास होता है और इंसान हक पे होता है ना तो वो कभी अकेला नहीं होता। हुआ माँ कुम आईना माँ कुन तुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं हो। और ये भी याद रखें, पता चलता है कि हक वाले हमेशा उनकी अल्लाह ताला ताईद और नुसरत फरमाता है, ये भी पता चलता है। तादाद में कमी को ना देखो, तादाद में कमी को ना देखो, वर्क करना है तो अपनी नियतों पे करो, वो है असल बात। अल्लाह ताला इन बातों से हमें इबरत सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनते हैं। इन बातों से हमें तिलावत सुनते हैं।
ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل أنزل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار